ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, लेकिन आज हिंदी का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। तो जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि हिंदी में पुरंजन उपाख्यान चल रहा है, इस पुरंजन उपाख्यान में 5 अध्याय हैं, 25, 26, 27, 28 और 29। इस उपाख्यान के माध्यम से नारद जी जो प्राचीन बरही को ज्ञान देना चाहते हैं कि जो कर्मों में आसक्त व्यक्ति है वो कैसे कर्मों से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति कर सकता है, ये यहाँ पर ये विषय चल रहा है। तो जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, प्रतिदिन प्रत्येक श्लोक पर जो प्रभुपाद लिखे हैं तात्पर्य, उस पर विचार करने की, जिसके माध्यम से हम लोग भी इस तत्व को समझ सकें। तो इसी में अभी 27वां अध्याय चल रहा है। इस 27वें अध्याय का भी आज 5वां श्लोक है। इस 5वें श्लोक पर श्रील प्रभुपाद ने काफ़ी बड़ा तात्पर्य भी लिखा है। तो वो श्लोक को मेरे पीछे दोहराएंगे। तया एवं रममाणस्य काम कश्मल चेतसः क्षणार्धम् इव राजेन्द्र व्यतिक्रांतम् नवम् वयः। तयैवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रांतं नवं वयः शब्दार्थ तया उसके साथ एवं इस प्रकार रममाणस्य रमण करते हुए काम काम से पूर्ण कश्मल पाप पूर्ण चेतसः उसका हृदय क्षणार्धम आधे क्षण में इव सदृश राजेंद्र हे राजा व्यतिक्रांतम बीत गया नवम नया वयः वायु जीवन। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे राजा प्राचीन बर्हिषत्, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पाप में कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नवजीवन तथा युवावस्था बीत गई। दोहराएंगे, हे राजा प्राचीन बरहिषत, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पाप में कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नवजीवन तथा युवावस्था बीत गई। तात्पर्य, श्रील गोविंद दास ठाकुर का गीत है, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परतीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। वे इस गीत में बताते हैं कि युवा अवस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवा अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द, ये इंद्रिय विषय हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांच इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सूंघने, तरुणी के नरम शरीर या स्तन को छूने तथा काम इंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। यह सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसीलिए मानव समाज में पांच विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वह इनका पालन नहीं करता तो वह पशु तुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, काम कश्मल चेतसः, राजा पुरंजन की चेतना कामेच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल सैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के नवम वया शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। नया आयु कहते हैं 16 से 30 वर्ष। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि जीवन इस प्रकार चलता रहेगा और इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवा अवस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवा अवस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है वह युवा अवस्था के बीत जाने पर निराश हो जाता है। युवा अवस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति के को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवा अवस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेटकर लूट रहा था तुरंत ही बीत गया। काम कश्मल चेतसः से यह भी सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरणार्थ, पशुओं में वर्ष के कुछ महीने में ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वह मांसभक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भवती रहने पर वह उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है। ये नियम मनुसंहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त हैं, अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध स्त्री मैथुन वह है जिससे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध हैं, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम प्रक्रिया के नाम से की है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदांतिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तैवं रममाणस्य कामकश्मल चेतसः क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रांतं नवम वयः। हे राजा प्राचीन बर्हिषत्, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पाप में कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा, और इस तरह आदि क्षण में उनका नवजीवन तथा युवावस्था बीत गई। तो जैसे कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि राजा पुरंजन जो कि एक जीव है और उसकी जो स्त्री है पत्नी वो उसकी बुद्धि है, यही इस कथा का मुख्य रूपक अध्यात्म पक्ष है कि जो पुरंजन है वो एक जीव है और जो उसकी स्त्री है वो उसकी बुद्धि है। तो जीव के जो गुण हैं वो बुद्धि में प्रतिबिंबित होते हैं। तो दोनों में जब तादात्म्य हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो बुद्धि जो आत्मा की जो चेतनता है वो बुद्धि में चली गई, और बुद्धि के जो जड़ धर्म हैं वो आत्मा में होने लगते हैं। तो आत्मा सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं नारद जी कि पुरंजन किस प्रकार से अपनी पत्नी में आसक्त था। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धियाँ जैसे कि तीन प्रकार बतलाई गई कि सात्विक, राजस और तामस। ये शरीर रथ के समान है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। तो जिसको जैसा सारथी प्राप्त होगा उसकी गति वैसी ही होगी। यदि सारथी दारू पीकर के आपका रथ चलाएगा तो आप भी, आपकी मृत्यु समीप ही है। यदि सारथी सावधान होकर के चलाता है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, उत्तम चालक है, तो सुरक्षित आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। यदि आलसी है, प्रमादी है, तो बहुत विलंब लगेगा पहुंचने में। तो ये जो बुद्धि है, हमारी भी इसी प्रकार से बुद्धियां हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो हमें अपनी इस बुद्धि को शास्त्रों के अनुसार यदि लगाते हैं तो ही हम अपना जो गंतव्य है श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनका प्रेम प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, जिसको बार बार कहा जाता है। तो इस रथ के माध्यम से भगवान ने ये रथ दिया है उनको प्राप्त करने के लिए। अब इस रथ को यदि बाहर की ओर दौड़ाया जाए, दुनिया में, विषयों में, तो फिर हमको उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहीं पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि व्यक्ति पांच विषयों में लगा रहता है। दुनिया में कुल जमा जितनी भी कामनाएं हैं, सब कामनाएं सब मिलाकर कुल जमा कुल टोटल पांच ही कामनाएं हैं। छठवीं न कोई कामना है, न चौथी कोई कामना है, न चार है न पांच है, केवल और केवल न चार है न छह है, केवल पांच कामनाएं हैं। उससे ज्यादा कोई भी जीव छठवीं और चौथी कामना कर भी नहीं सकता है, मींस न कम न ज्यादा। गिनी गिनाई पांच कामनाएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये कामना क्यों बनती है? ये कामना के पीछे एक ही लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति। यहां पर लिखा है कि व्यक्ति केवल और केवल आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये आनंद की प्राप्ति की कामना कैसे हुई? तो भागवत में लिखा है कि भयम द्वितीया विनिवेशतस्यादिसाद अपेतस्य विपर्यय स्मृति। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में जय श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता सखी विशाखा सखी की जय। तो यहाँ पर तो भगवान से विमुख हुआ जीव, अब विमुख होते ही माया ने उसको पकड़ लिया। अब माया ने पकड़ा तो माया के दो स्वरूप अविद्या के, एक आवरण और एक विक्षेप। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हम कृष्ण के दास हैं, भूल गया, और मैं ये शरीर हूँ, ये हमारे इसमें बुद्धि आ गई। और जब यहाँ पर मैं ये शरीर हूँ जब मान लिया, तब उसके बाद इस शरीर को पुष्ट करने के लिए कामनाएं बनाई। उन कामनाओं को केवल पांच रूपों ने बनाया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। कोई कहता है प्रतिष्ठा की भी कामना है, तो प्रतिष्ठा की भी कामना इन पांचों में है। प्रतिष्ठा चाहिए क्यों? प्रतिष्ठा इसलिए चाहिए ताकि लोग, ज़्यादा लोग जानेंगे, मुझे सलाम करेंगे, मैं देखूंगा आँख से, अच्छा लगेगा। तो आँख का विषय बनता है, लोग मुझे ज़्यादा मानेंगे, पहले सब चीज़ अर्पण करेंगे, भोग के जो विषय हैं सबसे पहले मुझे दिए जाएंगे। प्रतिष्ठा इसीलिए तो चाहिए, प्रतिष्ठा का लक्ष्य अलग नहीं है। तो प्रतिष्ठा भी इन पाँचों के अंदर आ गई। तो ये जो पाँच विषय हैं इनमें सुख है नहीं, प्रभुपाद कहते हैं इसमें क्या है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा मतलब इनमें हमने मान लिया है, होता तो सबको मिल जाता लेकिन नहीं मिलता है। रूप में हो, रस में हो, गंध में हो, स्पर्श में हो, शब्द में, एक एक करके सबकी व्याख्या करनी कैसे नहीं है। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि जो प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य लिखा है ये इनका वास्तविक हार्द है। प्रभुपाद ने कुछ जगह कुछ ऐसे तात्पर्य लिखे हैं जो बहुत डायरेक्ट हैं, उनका वो वास्तविक अपना मत है। कई जगह तात्पर्य लिखा है तो ऐसा लगता है कि एक छूट दे रहे हैं। वो केवल छूट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो कोई नियम है, वो हम लोग नहीं कर सकते इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि चलो ऐसा कर सकते हो। लेकिन सेवेंथ कैंटो के सिक्स चैप्टर में जो प्रभुपाद का तात्पर्य है वो वास्तव में वो उनकी चाह है। डायरेक्ट जो प्रहलाद महाराज के जो उपदेश हैं उस सेवेंथ कैंटो के सिक्स चैप्टर पूरे चैप्टर में, तो आप लोग उसको पढ़िए तो पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रभुपाद क्या चाहते हैं। और सेवेंथ कैंटो के फोर्टीन चैप्टर के सेवेंथ एट्थ वर्स में भी प्रभुपाद ने अपना जो विचार है मुख्य जो कराना चाहते हैं भक्तों से वो बताया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थी कोई भी हो। बीच बीच में कई बार फ्लेक्सिबिलिटी जो हमको सुनाई पड़ती है वो हमारी सुविधा के अनुसार संत महात्मा बोल देते हैं, लेकिन वस्तुतः उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे विवाह की बात आई और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मेन जो मुख्य जो विषय है वो है आनंद की प्राप्ति। इस संसार का प्रत्येक प्राणी दो ही चीज चाहता है, सुखम में भूयात दुखम मा भूत, मुझको खूब सुख मिले दुख मिले ही ना, ऐसी इच्छा है। लेकिन वस्तुतः जब सुख आ जाएगा तो दुख चला ही जाएगा। तो हर प्राणी केवल अनंत जन्मों से अनंत योनियों में अनंत प्रकार से अनंत प्रकार की चेष्टाओं से अनंत क्रियाकलापों से केवल एक ही चीज ढूंढ रहा है, वो सुख वो आनंद। और वो कहाँ ढूंढ रहा है? वो पांच विषयों में, और वो वहां पर है नहीं। जैसे मक्खन चूने के पानी में नहीं होता, होता दही में है। गुड़ और शक्कर गन्ने में निकलती है, वहां निकालेंगे तो निकलेगा, उसके जैसे दूसरे पेड़ से पेरेंगे तो शक्कर और गुड़ नहीं निकलेगा। घी केवल दूध में ही मिलेगा, सफेद रंग के लिक्विड में ढूंढने पर नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही माया में जो विषयों का जो आनंद का अनुभव हो रहा है वो है नहीं, वो माना हुआ है। यदि होता तो सबको मिलता, और एक ही व्यक्ति से सबको अलग अलग सुख और दुख प्राप्त होते हैं, इसका मतलब उसमें नहीं है। जैसे एक रमेश नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी एक पत्नी है, एक पुत्र है, उसका एक मित्र है, उसका एक पड़ोसी है और एक उसका कर्जदार है। सोचिए उस रमेश नाम का व्यक्ति यदि मर जाए, यदि वो मर जाता है तो उसकी पत्नी बहुत रोती है, सबसे अधिक कष्ट उसको पहुंचा, पत्नी को, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी अब उस पर आ गई। उससे थोड़ा कम उसके पुत्र को, उससे थोड़ा कम मित्र को, हाँ मर गया मेरा मित्र, सुनते ही थोड़ा दो चार आंसू बहा लिया, ज्यादा नहीं दो चार पांच आंसू, बस अपना मित्रता दिखा दिया। उसके बाद उसका जो बाजू में पड़ोसी है, अब मान लीजिए उसकी पत्नी झाड़ू लगाते लगाते सुनने में आ गया उसके पति को कि हमारा पड़ोसी मर गया, अरे राम राम बहुत बुरा हुआ, बस इतना ही, खूब रोना नहीं, बस बड़ा बेकार हो गया, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, असमय ही उसकी मृत्यु आ गई। और जो एक व्यक्ति है जो कर्जदार है, वाह हे भगवान तांता छूटा, अच्छा हुआ मर गया ये, ऐसा सोचता है। सोचिए यदि उस व्यक्ति के मरने से किसी को दुख है किसी को सुख है, और थोड़ी देर बाद पता चला कि रमेश तो बहाना कर रहा था और जाग गया, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? प्रसन्नता उसकी पत्नी को, फिर उसके पुत्र को, उसका मित्र, अच्छा हुआ भगवान आपने बड़ी कृपा किया, उसका पड़ोसी, चलो अच्छा हो गया थोड़ा और उसको कम सुख का अनुभव, और जो उसका कर्जदार है माथा पटक लेगा, तो बड़ा बेकार हो गया। तो एक ही व्यक्ति से सोचिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अनुभूति हुई, इसका मतलब जिसमें सुख माना था उसमें था नहीं तो कर्जदार को भी होना चाहिए था, उसके मरने पर प्रसन्न हो गया, उसके जिंदा होने पर फिर दुखी हो गया, है ना। ऐसे ही रस, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खा लिया, एक खाया बहुत आनंद है, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, 15 में। अरे भाई मारेगा क्या खिला खिला करके? माने अभी वो रसगुल्ला पहला वाला बहुत मजा दे रहा था, सुख दे रहा था, अभी 14, 15, 20, 100 रसगुल्ला जितने भी खाने की सामर्थ्य है, उसके बाद मारोगे क्या? चिल्ला के बोलते हटाओ इसको, फेंको यहाँ से, अभी जबरदस्ती खिलाओगे तो खाएगा? बताओ, पहले वाले रसगुल्ले में ज्यादा सुख, फिर कम, फिर और कम, फिर खत्म। यदि होता तो उसको मिलती। पानी ही देखिए, पानी आपने पिया, पीने के बाद क्या होता है? हटाओ इसको, प्यास बुझ गई, समाप्त करो, भगाओ, अच्छा नहीं लगता। वो पानी पिलाने पर भी, देने पर भी नहीं पिएगा, फेंक देगा। ऐसे स्त्री सुख में, इसी प्रकार से सम में, गंध में देखिए, एक शराबी व्यक्ति है, उसके पास बढ़िया पेट भी भरा हो, चाहे जितना खाया पिया हो, शराब में जिसने सुख माना है उसको शराब रख दीजिए, हाँ क्या मजा, अच्छा हुआ, अब बढ़िया किया, बड़ा अच्छी दावत हुई कि शराब लेकर आ गए, उसकी गंध सूंघते ही बड़ा आनंद का अनुभव करने लगता है। अब पंडित जी के पास ले जाइए जो पूजा कर रहे हैं, हटाओ हटाओ क्या पाप कर रहे हो, यहाँ पर लेकर आ गए क्यों? यदि उस विषय में सुख है या दुख है तो मिलना चाहिए था, लेकिन केवल मानने का है ना, एक शराबी को शराब में सुख माना इसलिए मिला, और एक पंडित जी हैं उनको पास रख दिया शराब तो फेंक दे रहे हैं, कह रहे हैं कितनी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, ऐसा करके फेंक देते हैं। इसका मतलब उसमें सुख था नहीं, माना हुआ था बस, ये भ्रम है एक प्रकार का। ऐसे रूप में, यदि रूप में सुख होता तो किसी भिखारिन का यदि बच्चा काला कलूटा कुब्जा सा रहता, टेढ़ा मेढ़ा आंख फूटी भेड़ा, यदि ऐसा बच्चा है किसी भिखारिन का, और वो खो जाए और हमारे गुरुकुल में आए और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब उस बच्चों को देख करके सुख होना हो जाना चाहिए था, यदि रूप में सुख होता तो। क्यों? क्योंकि और भी सुंदर सुंदर बच्चे हैं, खेल रहे हैं छोटे छोटे उसकी उम्र के, लेकिन नहीं, उसको तो उसी का बच्चा चाहिए, किसी और के बच्चे को लेकर के सुखी नहीं होती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे में ही सुख का अनुभव किया, माना उसने उसको। किसी भी धनी व्यक्ति का बच्चा ले जाके दो, अरे तेरा बच्चा तो क्या भिखारी ही बनता, ले अरबपति का बच्चा ला करके दे रहा हूं इसको रख लो, रखेगी? नहीं रखेगी, ना उसमें वो सुख मान पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो विषय बनाया था उसी का चिंतन किया, ध्यायतो तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजाए थे, कि जिस विषय का व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान करते 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 वो बहुत प्रगाढ़ता को प्राप्त कर लेता है, अब फिर उसके न मिलने पर व्यक्ति बौखला जाता है। तो इस प्रकार से रूप में हो, रस में हो, गंध में हो, स्पर्श में हो, किसी भी चीज में हम लोग स्पर्श करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अलग अलग, अमेरिका भी देखने की इच्छा है, लंदन भी, यूरोप, सब आंखों को, आज तक इतनी चीजें अच्छी अच्छी देख लिए, लेकिन आज तक देखना पूरा हुआ ही नहीं। नया मोबाइल आ जाए वो भी देख लें, नई गाड़ी आ जाए जरा देखें, तो आंख को देखने के लिए चाहिए। वो अपने विषय को एक्चुअल में वो देखना नहीं चाहते, हम देखने से हम देखने के पीछे जो आनंद होगा उसको चाहते हैं, तो हमने उसमें माना इसलिए देखना चाहते हैं, और नहीं तो जितना एक छोटे से व्यक्ति को खाने में सुख होता है उतना ही धनी व्यक्ति को होता है, एक ही प्रकार, खाली देखने का अंतर है। और हमारे मन में एक भ्रांति ये है कि जैसे हम सोचते हैं कि जो बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत समृद्ध व्यक्ति है, उसको हमसे ज़्यादा सुख है। एक उदाहरण में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक जज है, हम ही लोग हैं, कोई भी हैं, किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी है, अब वो कार लेकर किसी गांव में गया, कार खराब हो गई, अब जैसे ही कार खराब हो गई, अब वो छोड़ करके दूसरी गाड़ी में बैठकर फोन करके अपना चला गया। अब उस कार को देखकर एक फकीर भिखारी गांव का बिल्कुल भिकमंगा आदमी उस कार को देखकर उस कार में बैठता छूता है, वाह कितनी सुंदर, क्या मजा देने वाली चीज। अब उसको जिसको मजा दे रही थी उसके लिए अब ये सजा हो गई, क्यों? अब बेचारा उससे नहीं गया, अब दूसरी गाड़ी से गया। अब ये सोचता है कि मेरे को यदि इसमें बैठने को मिल जाए तो बहुत आनंद हो जाए, मेरे पास हो जाए तो बहुत मजा हो जाए। चलो कुछ समय के बाद होता क्या है कि इसी भिखारी इसी गांव के गरीब व्यक्ति को जब उसमें एक बार और देखते खड़ी है गाड़ी तो बैठ जाता है, बैठ कर बहुत अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि इसने कार भी सीख लिया गांव में कि अब तो मैं कार चलाऊंगा, मेरे को कार चाहिए। अब गांव में कार सीख लेता है और एक किसी धनी व्यक्ति के यहाँ शहर में नौकरी लग जाए उसकी। अब जब शहर जाता है वो सर्विस करने के लिए, वहाँ उसको कार दी जाती है, कार में बैठो। जैसे ही कार में बैठा पहले दिन बहुत अच्छा लगा, 6 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 5 10 दिन 15 दिन। उसके बाद जब उसका जो मालिक है 6 घंटे से 8 घंटा करता है, पहले तो सोचा वाह मैं तो मर्सिडीज कार चलाता हूँ, BMW चलाता हूँ और महंगी महंगी जो प्रीमियम कार है सब चलाता हूँ। लेकिन जब उसको अधिक काम मिलने लगे कार चलाने का, तो उसको कार काटने लगी। अब वो सोचता है कब ये नौकरी छूटे, मेरे बच्चे से कभी ये कार ड्राइवर की नौकरी नहीं करवाऊंगा। सोचिए उस कार को प्राप्त करने के लिए कितना लालायित था, अब वो कार भी मिल गई, उसका ड्राइवर भी हो गया, अब वो कार उसको 24 घंटे के लिए मिल गई, लेकिन उसको काटने लगी वो कार। अब सोचता है कि क्यों बार बार ये मेरा मालिक बुलाता है, क्या इसको कोई काम नहीं है, थोड़ा पैदल भी चले सेहत सही रहे, बार बार कार मंगाता है। तो एक ही कार सोचो उस व्यक्ति को दुखी करने लगती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को विषय में केवल माना है और अनंत काल से माना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मानने को हटाया जा सकता है हम भक्ति करें तो भक्ति कौन करेगा, भगवान से अनुराग करेगा कौन, मन को ही तो अनुराग करना है, मन को ही तो भक्ति करनी है, साथ में इंद्रियों को भी करना है। तो जो करने वाला जो व्यक्ति है वो मन है, ठीक है आप उससे कराएंगे, लेकिन आप कराने वाला कौन है, बुद्धि, निश्चय कौन करेगा कि भगवान में ही सुख है, श्री कृष्ण ही वो परमानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं। ये मना ये बुद्धि में निश्चय किसके है, जिस व्यक्ति के ये निश्चय है बुद्धि में कि श्री कृष्ण ही आनंद है और हम उनके अंश हैं, इसलिए उनको चाहते हैं प्रतिक्षण, और वो जो आनंद है उन्हीं में मिलेगा। ऐसा जिसका निश्चय है, जिस बुद्धि का, वही तो अपने मन को भगवान में लगाएगा। और जिस व्यक्ति का ऐसा निश्चय है ही नहीं, जिसका निश्चय ये है कि सुख तो विषयों में है, हाँ मजा तो आ रहा है, ऐसी बात थोड़ी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मजा नहीं है, मजा ना होता तो इतने लोग कैसे मरते, कैसे परेशान होते इसके लिए। हाँ है, लेकिन कैसा है, बहुत क्षण भंगुर, बहुत क्षण मिला और छूटने वाला है, बस मिलते मिलते छूट जाता है। यदि उसमें आनंद होता तो लोग उसी में पड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए किसी माँ का बेटा खो गया, कहीं चला गया और बहुत सालों के बाद मिला, तो माँ क्या करेगी, गले से लगा लेगी, बहुत प्रेम करते, वाह बेटा तू आ गया, उसको चुंबन करेगी, आलिंगन करेगी, एक बार दो बार, और कम होते होते माँ की भी दर्द हो गया, बेटा थोड़ा जा खेल कूद, बस संसार का आनंद ऐसे ही है, मिला और उसके बाद कम होने लगा। तो ये जो निश्चय करने वाली जो बुद्धि है, हमको इस बुद्धि में ये निश्चय यदि हो जाए जिस व्यक्ति के कि आनंद श्री कृष्ण ही हैं, और हम उनके अंश, हम कई बार सुनते हैं ये बात कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, हम आनंद के अंश हैं, आनंद ही तो श्री कृष्ण है। मान लो कोई कह दे हमारी माँ खड़ी है सामने, हम उसको कहें ए मेरे पिता की पत्नी, तो भी वही है, और हम डायरेक्ट कहें कि ये मेरी माँ, तो भी उसी को लिए है, दोनों में बोलने का अंतर है। तो ऐसे ही वो आनंद ही बोलो चाहे श्री कृष्ण, एक ही चीज है, क्योंकि जीव श्री कृष्ण के प्राप्त आनंद ही तो चाह रहा है, अल्टीमेटली क्या चाह रहा है, आनंद। लेकिन बस उसको एक भ्रम हो गया है कि आनंद कहाँ मिलेगा, विषयों में, और अनंत जन्मों से इसका संग करने कारण से वो छूटता नहीं है। और सच बात है, क्योंकि अनुभव में है, तुरंत रसगुल्ला खाया तुरंत मिला, और ये विचार नहीं लगाया कि 1 2 3 4 फिर छूट जाए, फिर खत्म हो जाएगा, इतने तक पहुंच नहीं पाते। हाँ है रसगुल्ले में तो मजा है, तभी तो खा रहे हैं। तो बुद्धि ने ऐसा मान के रखा है, इसके लिए यदि थोड़ा और दिमाग लगाए कि यदि रसगुल्ले में ही होता तो 10वें 15वें वाले रसगुल्ले में भी होता उतना ही, लेकिन नहीं होता। तो इसीलिए व्यक्ति का जो आनंद का स्तर है, देखने में केवल अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर दुखी और सुख का अनुभव करता है। एक चपरासी है और उसका स्वामी जज है। अब वो जज को जितना बढ़िया महंगी कार में यात्रा करने में कष्ट होगा, उतनी साइकिल में कष्ट होगा। कष्ट का अनुभव तो चपरासी भी करता है, उसको भी 6 घंटे बैठकर जाना पड़ता है और जज को भी 6 घंटे बैठकर जाना पड़ता है। थोड़ा अंतर देखने का अंतर है बस, लेकिन जो कष्ट का अनुभव किया जिस मन ने, वो उतने ही मात्रा का है। लेकिन फिर भी चपरासी को अगर कहे कोई कि तुम्हारे जो स्वामी मालिक है जज, उसको भी उतना ही कष्ट है जितना तुमको, नहीं मानेगा, बोला बकवास बात है, उसको कहा वो तो बढ़िया कार से चलता है, लेकिन क्या बैठे बैठे सुख होता है किसी को? वही दचक्के, वही समस्या। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी केवल इन 5 विषयों से आनंद चाहते हैं। हमारी बुद्धि में केवल इतना हो जाए कि श्री कृष्ण आनंद हैं। प्रभुपाद तो इतना तक लिख दिए हैं कि किसी भी प्रकार की भौतिक चेष्टा करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रयास जीवा के लिए। अब भागवत में भी है, तस्सैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर यदा तल्लभ्यते दुखवद अन्यथा सुखम सर्वत्र कालेन सर्वत्र गभीर रम्हसा। नारद जी भी कहते हैं कि जैसे दुख जो है जब बिना मांगे आ जाता है, आता है कि नहीं? सबका दुख बिना मांगे आता है। कैसे आ गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया? तो हमने कुछ पाप किया होगा तभी तो हमारी इच्छा के विरुद्ध वो दुख उपस्थित हो गया। तो जब हमारी इच्छा, हम नहीं चाहते, कोई भी प्राणी नहीं चाहता दुख, लेकिन फिर भी उपस्थित हो गया। तो जब बिना मांगे बिना इच्छा के अनिच्छा में ही दुख उपस्थित हो गया, तो फिर सुख भी उसी प्रकार से उपस्थित हो जाएगा हमारे कर्मों के फल से। हमने केवल पाप पाप तो किया नहीं होगा, कुछ पुण्य भी किया होगा। तो पाप पुण्य का दोनों का फल सुख दुख है। तो जैसे दुख बिना मांगे प्रकट हो जाएगा तो सुख भी प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर कहते हैं कि तस्सैव हेतो प्रयतेत, इसलिए केवल भगवान के लिए भक्ति के लिए प्रयास करना है उनको प्राप्त करने के लिए। बाकी प्रयास व्यर्थ है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तो विषयी लोगों की बात हुई। जो योगी लोग सिद्धियों में जो सुख ढूंढते हैं, ज्ञानी लोग जो आत्मा में आनंद ढूंढते हैं, और कर्मी लोग जो विषयों में ढूंढते हैं, योगी ध्यानी ज्ञानी सब के सब, भागवत में तो यहां लिखा है कि सारे के सारे जब वहां उनका कल्याण दिखता है, उनको पता चल जाता है कि इसमें नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, तो वापस भक्ति में आ जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं भगवान से, अथात पादाम भुज आनंद दुखम पदाम भुजम हंसा शैरन अरविंद लोचना सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी स्तन माययामी विहता न मानिनः। भागवत 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 3रा श्लोक में बोलते हैं उद्धव जी कि ये तो कर्मी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े योगी हंस लोग ज्ञानी, वो लोग भी जब योग में ज्ञान में जब ढूंढते ढूंढते सुख को थक जाते हैं, तो बाद में हंसा शैरन अरविंद लोचना, फिर आपके जो आनंद प्रदान करने वाले चरण कमल हैं उसका आश्रय ले लेते हैं। जो नहीं लेते मानी है, उनका क्या होता है? वो बार बार आपकी माया से हत होते हैं। और जब वो भी ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी भी हत होते हैं, बाद में परेशान होकर आ ही जाते हैं। इसी बात को ब्रह्मा जी ने कहा कि पुरे है भूमन बहवोप योगिना स्तदर्पितेहा निज कर्म लब्ध्या। कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगी थे बड़े पुराने समय के, जिन्होंने आपको खोजा अपने बुद्धि बल से, वो भी थक गए योग करके। जब अष्टांग योग में नहीं मिला तो भक्ते ही वह कथोपनीतया भक्त, कहते हैं कि जब भक्ति मात्र से फिर जाना कि अब तो ये भक्ति से मिलेंगे, और श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना तो केवल भक्ति साधन है, ऐसा जान करके वो भक्ति में लग गए। सुखदेव गोस्वामी तो यहां तक कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। दूसरे अध्याय के चौथे दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है, पीछे वाला 10, 14, 5 था। इसमें कहते हैं कि तपस्विनो, बड़े बड़े तपस्वी आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, चाहे जितने शरीर को सुखा डालें। दान परा जो बहुत बड़े बड़े दानी हैं वो भी नहीं प्राप्त कर पाते। यशस्वी जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा यश को प्राप्त किया वो भी नहीं प्राप्त कर सकते उस आनंद को। जहां वो ढूंढ रहे हो गलत स्थान है बस। और मंत्र विदा, बहुत सारे वेदों के मंत्र को जानने वाले ज्ञाता वेदज्ञ वो भी नहीं जान सकते। मनस्वी लोग नहीं समझ सकते। और कहते हैं मनस कौन समझ सकता है, कैसे समझ सकते हैं, कहते हैं बिना यदर्पणम, जब तक आपके चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे। कहते क्षेमाम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, आपके चरणों में शरणागत हुए बिना कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते, माने आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, आपको प्राप्त नहीं कर सकते। अल्टीमेटली चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, सबको ही तो आनंद चाहिए। अब जो वो आनंद श्री कृष्ण है और वो गलत जगह ढूंढ रहा है तो अब तो मिलेगा ही नहीं। ज्ञानी लोग आत्मा आनंद में ही खोए रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, इस भ्रमात्मक बुद्धि से वो उसी में डूबे रहते हैं। कब तक ऐसा भाव जो कि मैं ब्रह्म हूं, ये केवल सत्व गुण से उत्पन्न होता है। असत्व गुण किसका गुण है? माया का। तो माया है इसका मतलब अभी माया में ही है। सत्व गुण बोला ना, ज्ञानम, ज्ञान कैसे पैदा होता है? सत्वात संजायते ज्ञानम। आज जो सत्व गुण है वो तो माया का गुण है। आज जब तक माया है तब तक अभी तो इसी संसार में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मधुमक्खियां सता रही हैं और वो मधुमक्खियों के भय से पानी में डूब जाए तालाब में, तो जब तक डूबा रहेगा तालाब में तब तक वो बचा रहेगा। और जैसे ही तालाब से निकलेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि आत्मानंद तो एक न एक दिन समाप्त होगा, क्योंकि वो सत्वगुण से आत्मोत्थम तो सात्विकम 11:25-29 में भगवान ने उद्धव से कहा कि जो ये आत्मज्ञान है, आत्मा से कि मैं ब्रह्म हूं ऐसा जो ज्ञान लोगों को होता है, ये सात्विक ज्ञान है। आज जो सात्विक ज्ञान है वो समाप्ति वो माया का ही है, तो माया निवृत्ति इसका मतलब नहीं हुई है, क्योंकि भगवान की शरणागति नहीं हुई है। तो जब भगवान के शरणागत ज्ञानी भी करेगा तभी तो माया जाएगी, क्योंकि माया है किसकी? भगवान की। तो जब भगवान को शरणागत होंगे तो ही माया का सत्व गुण भी जाएगा ज्ञानियों का। तो इस प्रकार से न ज्ञानी न योगी न कर्मी, ये तीनों प्रकार के जो लोग, ये भगवान को जब तक भगवान के रूप में आनंद के रूप में यदि उनकी उपासना नहीं करेंगे कि जो मैं आनंद अनंत जन्मों से हर विषयों में जो अन्वेषण कर रहा हूं वो श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि तीन ही चीज है समझने के लिए, एक श्री कृष्ण है, एक उनकी माया है और एक जीव है। तो मैं जीव, श्री कृष्ण भगवान और एक माया। यदि मैं माया का अंश होता, यदि मैं माया का शरीर माया से बना होता तो फिर मैं माया की चीज को चाहता, लेकिन मैं माया को नहीं चाहता, माने दुख को नहीं चाहता। इसीलिए मैं केवल किसको चाहता हूं? आनंद को। तीन के अलावा चौथा तो कोई तत्व तो है ही नहीं संसार में। भगवान श्री कृष्ण है, उनकी माया है, और नहीं तो जीव है। तो यदि जीव माया का अंश होता तो उसकी कामना करता, लेकिन माया कोई, माया मतलब दुख स्वरूप, तो दुख कोई नहीं चाहता, इसका मतलब वो सुख चाहता है, इस अर्थात वो सुख का अंश है। कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि सुख और आनंद अलग अलग है, सुख माईक होता है और आनंद भगवान का है, ऐसा नहीं है। जो सुख है वही आनंद है, वही मजा है, वही हैप्पीनेस है। केवल दो स्थान है उसको खोजने के, एक माया के विषयों से और एक भगवान से। तब जब आनंद भगवान के पास है, आनंद वही है, उनके पास क्या, वो आनंद ही है। तो जब उनकी भक्ति करेंगे, उनका नाम श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंदन सब करेंगे तभी तो वो प्राप्त होगा। बाकी हम अपने मन को चाहे जितना समझा लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें, कितने भी पत्नी पुत्र आदि इकट्ठे कर लें, माँ बाप भाई बंधु, इनसे ना मिला है ना मिल सकता। और सब स्वार्थी हैं, और सब व्यक्ति अपना अपना आनंद चाहते हैं, कोई किसी को सुखी नहीं करना चाहता, सब अपने को करना चाहते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बने, माँ कहती, अरे वाह, मैं तो कुछ नहीं चाहती, बस मेरी एक ही इच्छा है मेरा बेटा सुखी रहे। अरे भाई, तेरा बेटा सुखी क्यों रहे? वो सुखी रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट उसमें है। तो माने तुमने इंस्ट्रूमेंट बनाया अपने बच्चे को सुखी होने का, तो वहां पर भी स्वार्थ है। हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना, बस हमारा बच्चा सुखी रहे, हम तुम्हारा तो ठीक ठाक है। तो हमने वहां पर सुख को बच्चे के माध्यम से सुख चाहा, बच्चे का सुख नहीं। क्यों भाई? आपका बच्चा टपोरी हो जाए, लफंगा हो जाए, क्या दिक्कत है? चोर बन जाए? नहीं, चोर बन जाएगा तो नाम बदनाम होगा, बदनाम होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मैं अपना सुख चाहती हूँ, इसलिए मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ा आदमी बने, संसार में नामी बने। ऐसे ही पति पत्नी, याज्ञवल्क्य ने तो इतना बड़ा उपदेश किया अपनी दोनों पत्नियों को, कहा कि केवल व्यक्ति आत्मसुख चाहता, और चाहेगा क्यों नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्माएं सब भगवान की श्री कृष्ण के अंश हैं। कहने के लिए संबंध है, लेकिन किसी के साथ संबंध है नहीं। है क्या? माना हुआ झूठा, वो है ही नहीं। है ही नहीं, यदि सिद्ध करने जाएंगे तो किसी भी प्रकार से नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि शरीर कैसे बना? माया से। और आत्मा किसका अंश? भगवान का। और माया किसकी? भगवान की। तो दोनों तरीके से हम भगवान के हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें यहां से भी उठी, यहां से भी उठी, और दोनों टकरा करके आपस में क्या मान लें कि हम दोनों संबंधी हैं, तुम मेरी मैं तेरा। अब मान लें, देखो ना, ये वाली लहर इसका अंश थी, ना ये वाली लहर इसका अंश थी, बस दोनों मिल गए तो मान लिए। लेकिन दोनों किसके अंश हैं? समुद्र के। इसी प्रकार से हमारे जितने भी परिजन हैं, ये सब हमारे, कोई इनके साथ किसी भी तीनों कालों में संबंध नहीं है, केवल माना हुआ है बस। इसीलिए भागवत में तो यहां तक कि वर्णाश्रम धर्म को बोला पाप कर्म है, ये पाप कर्म है। वर्णाश्रम धर्म का पालन भी, लेकिन फिर भी उसके पथ पर चलकर भगवान को प्राप्त करना एक आइडियल बता दिया कि लोग बिगड़े ना। लेकिन वस्तुतः त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन, कहते हैं सब कुछ छोड़ करके यदि भजन करता है उससे बड़ा तो कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो राय रामानंद को बोले तो बाह्य है, सब बाह्य धर्म है, जैव धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बोला गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि। तो भगवान ने कहा कि सारे धर्मों को, सर्वधर्मान माने सभी धर्मों को छोड़कर आ जाओ, तो सभी धर्मों को छोड़ने में तो पाप लगना चाहिए, तो बोले पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने एक ही चीज बोला, क्या बोला? कि सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो पुण्येभ्यो नहीं बोला, पुण्यों से मुक्त करूंगा ऐसी बात तो बोला नहीं। तो फिर पुण्य रहेंगे तो बंधन तो रहेगा कि नहीं? सत्य है ना? पुण्य का फल क्या? आ ब्रह्म भुवनान लोका। पुण्य का फल क्या है? ये संसार है। अब पाप का फल भी संसार है, लेकिन नरक में है, नरक में उसका फल है, नरक योनियों में है, लेकिन है दोनों। दोनों कहां रहे पाप पुण्य? इसी संसार में। तो वस्तुतः जो पुण्य का फल, भगवान ने इसलिए नहीं कहा वहां पर पाप पुण्य अलग से, क्योंकि जो पाप है, जो पुण्य है वो भी पाप है ना। भक्ति कोई पुण्य पाप नहीं है। भक्ति के अलावा जो वर्णाश्रम के जो कर्म है, शुष्क वर्णाश्रम, भक्तियुक्त वर्णाश्रम नहीं, कहते हैं कि वो पाप है। इसीलिए बोल दिया सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, क्योंकि यदि पाप से केवल मुक्त करेंगे, अपुण्य रह जाएंगे, तब पर भी तो संसार रहेगा, डर नहीं रहेगा? इंद्र बन गए तो चाहे आपको सोने की हथकड़ी पहना दें और चाहे लोहे की, बंधन तो बंधन है, दोनों जगह मुक्ति नहीं है, दोनों जगह सुख नहीं है। किसी चिड़िया को चाहे सोने के पिंजड़े में डाल दो और चाहे लोहे के पिंजड़े में डालो, दोनों जगह उसको दुख का अनुभव होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा सर्व पापेभ्यो माने सर्व पुण्येभ्यो च, क्योंकि जो पुण्य है वो भी पाप है। क्यों? क्योंकि जो पुण्य का फल है वो भी संसार ही तो है, और वो संसार है माने दुखालयम अशाश्वतम, ये भी दुख है। केवल अंतर इतना है कि किसी व्यक्ति को एक खाली पानी में जहर मिला हो और कोई बढ़िया दूध रबड़ी मसाले वाले दूध में ऐसी चीजों में जहर डला हो, दोनों खा रहे हैं, देखने की दृष्टि अलग अलग है कि वाह इसको ज्यादा सुख होगा, रबड़ी वाला खा रहा है दूध, केसर वाला, लेकिन जहर वहां भी मिला और पानी में भी मिला है। तो चाहे भौतिक संसार का सुख हो चाहे स्वर्ग का हो, दोनों जगह मरना ही है, समस्या है। और उल्टा स्वर्ग से जो नीचे गिरा वो तो सीधे निम्न योनि में जाता है। वेद कहता है हीन तरम वा विशंति, बीच में कहीं नहीं रुकता, सीधे पेड़ बन जाएगा, जलचर बन जाएगा। तो इसीलिए इसका सारांश यह है पूरे इस प्रभुपाद के तात्पर्य का कि जितने भी जीव हैं वो केवल विषयों में सुखों को मान लिया है, नहीं मानने के कारण से उसका अनुभव हो रहा है कि है। आज जिस दिन उसको मानना समाप्त हो जाएगा, मतलब हमारी बुद्धि से ये निश्चय हो जाएगा कि वो जो आनंद में खोज रहा हूँ 24 घंटे प्रतिक्रिया में, इवन सोने में, जागने में, रोने में, हंसने में, सब जगह जो खोज रहा हूँ वो श्री कृष्ण ही वो आनंद है, और वो आनंद उनमें ही मिलेगा। ऐसा उनमें ही, उनमें भी नहीं कि थोड़ा माया के कार्य कर लें और थोड़ा भगवान वाला भी कर लें, नहीं, केवल श्री कृष्ण में ही। जिस दिन ऐसी बुद्धि जिसकी होगी मेरे को भी लगा करके, उसी दिन ये हमको श्री कृष्ण की प्राप्ति आधी हो जाएगी, क्योंकि हमारा निर्णय सही हो गया कि श्री कृष्ण में है, अब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब बाकी संसार में यदि जा रहे हैं इस रथ को लेकर के, दुनिया में कहीं भी घूम लो है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। तो ये इसका पूरा सारांश था। श्री कृष्ण में ही सुख है, उनमें सुख है, मतलब उनको सुख को प्राप्त करने के तीन मार्ग भागवत में बताए 11:20:6 में कि ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान और कर्म से लक्ष्य श्री कृष्ण की प्राप्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि जो कर्म है उसका फल क्या है, स्वर्ग आदि च्युत होने वाला। जो ज्ञान है उसका फल केवल अज्ञान की निवृत्ति है, उसमें भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको दुख की निवृत्ति तो सो जाते हैं तब पर भी नहीं होता। कोई डॉक्टर हमको सुई लगा दे बेहोशी की तब पर भी दुख नहीं होता, लेकिन फिर जागे तो फिर दुखों का अनुभव। तो इसीलिए, लेकिन आनंद मिल गया तो दुख जरूर चला जाएगा, इसीलिए वो केवल और केवल भक्ति से प्राप्त हो सकता है। क्यों भक्ति से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो भक्ति है वो भगवान की है, मीन्स भगवान स्वरूप शक्ति विशिष्ट जो है वही भगवान है, और जो स्वरूप शक्ति की जो सारभूता हलादिनी शक्ति, उसकी भी जो सारभूता जो है उसी का नाम भक्ति है। तो भक्ति है और भक्ति ही श्री कृष्ण को अट्रैक्ट करेगी, और जब वो प्रसन्न होंगे तो अपनी कृपा दे देंगे, तब हमारा कल्याण हो जाएगा, उनकी प्राप्ति सहज हो जाएगी। तो हमारे पास साधन भक्ति के तौर पर श्री कृष्ण में ही आनंद ढूंढें तो अधिक लाभ है, क्या पूर्ण लाभ है। विषयों में न मिला है न मिल सकता है, हमारा प्रतिदिन का ही अभ्यास है। इस प्रकार से ये प्रभुपाद ने पुरंजन के माध्यम से यहाँ पर तात्पर्य में यही पांच चीज़ें बताई थी मुख्य आनंद प्राप्ति की, और वहाँ पर किसी को मिला नहीं है, न तीनों कालों में मिल सकता है। ये हमारी बुद्धि को निश्चय करना है, ये निश्चय नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि बारिश हो रही है, कोई छाता पकड़ के रखा है तो पानी कैसे पड़ेगा उस पर। अब भगवान यदि कृपा करना भी चाहें, लेकिन हमारा निश्चय क्या है, हाँ 1-2-4 घंटा जप करेंगे, अब बाद में फिर खोजने लगेंगे वही विषयों में। मानते हैं, मानते तो हम विषयों में ही हैं, भक्ति हम करते तब तक है जब तक पत्नी पुत्र आदि घर बार में बढ़िया सब चमाचम चलता रहता है, व्यवहार पैसा नहीं घटता, कुछ नहीं घटता, और जैसे ही कम हुआ उसके बाद उसकी खोज के लिए फिर प्रयास। तो भक्ति भी करते हैं कि ताकि सब सही चल रहा है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ाया, कुछ धन वन नुकसान हुआ कंपनी का, घर का कोई मर गया तो खत्म। तो इसीलिए ये निश्चित हमको बुद्धि में हमारी करना है, यही इनकी बुद्धि जो प्रंजन की बुद्धि है वो तामसी राजसिक बुद्धि है, इसीलिए उसको फंसा के रख रही है अपने पास। हमारी बुद्धि भी हमको ऐसा मार्गदर्शन कराती है, लेकिन हमको संतों के, प्रभुपाद के और भी भागवत के माध्यम से अपनी बुद्धि को उस लेवल तक ले जाना, उस विचार तक कि मैं आनंद श्री कृष्ण में ही ढूंढूंगा, इतना निर्णय हो जाए फिर उसके लिए भक्ति करेंगे, वो भक्ति मार्ग है उसको प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, शिल प्रभुपाद की। किसी है कोई प्रश्न? हाँ प्रभु, चाहता नहीं, निर्णय में बोला ना कि हमारा निर्णय ऐसा है आखिरकार हम माया में क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि इसमें आनंद है। तो ये जो बुद्धि एक दिन के अभ्यास से नहीं आएगी, बार 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 भक्तों के संग करेंगे, उनका पूरा कहना मानेंगे। अब प्रभुपाद ने बात बोला, हम उसमें अपनी बुद्धि लगे, हाँ ठीक है, प्रभुपाद ने अपने लेवल पर कह दिया, समय के अनुसार कह दिया, अब टाइम चेंज हो गया है, कुछ चेंज नहीं हुआ, टाइम इटर्नल पदार्थ है। वो हमारी बुद्धि में एक भ्रम सा पैदा है कि विषय में आखिरकार आनंद ही तो ढूंढेंगे हम, श्री कृष्ण में ना ढूंढ के माया में ढूंढेंगे। तो ये जब निर्णय बार बार अभ्यास करने, अब मैं बोल रहा हूँ, भागवत में एक बात बोला है आपकी 5:18:4 में कि बड़े बड़े विद्वान, हम आप तो छोड़िए, बड़े बड़े महापुरुष भी, वदन्ति कव्यः विश्वम स्म नश्वरम, बड़े बड़े कवि विद्वान लोग कहते हैं संसार नश्वर है, भद्र श्रवा वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, फिर भी कहते तथापि मुह्यन्ति तवाज माया, फिर भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, हमको पता है कि आनंद श्री कृष्ण है उनमें मिलेगा, फिर भी हम थोड़ी देर बाद फिर खोजना वहीं करेंगे। लेकिन इसी को तो समझाना है बार बार, संघ के प्रभाव से वो होगा। प्रभुपाद ने बोला ना अंतिम समय में कि जो व्यक्ति संघ करेगा भक्तों का, तो उसमें भक्ति बढ़ेगी, और जैसा बढ़ेगा तो वहां पर की जो खोज है गलत स्थान पर वो कम होगी। करना क्या होता, क्या है प्रॉब्लम, क्या है?
कैंसर है, कैंसर।
हाँ तो
कैंसर हो गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी लाइफ क्या है।
हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? तब ये क्या करें इसमें, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पुत्र तो 4 महीने में, उसके बाद तो हमको यहीं रहना है, और हम भी चले जाएं उसके पहले क्या गारंटी है। तो सावधान होकर के, वो तो जो हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन प्रयास अब जो करना है भगवान के लिए। माला करते हैं बहुत अच्छा है, और ऐसी वृंदावन में रखो आप जब तक शरीर ना छोड़े, आप जाइए मत यहाँ से, वृंदावन में भक्ति की पूरी अनुकूलता है, बाकी जगह नहीं है। करते हैं लोग, लेकिन जो अनुकूलता वृंदावन में वो कहीं नहीं मिल सकती, ना मुंबई, दिल्ली, पाकिस्तान कहीं नहीं मिलेगी, अमेरिका, लंदन कहीं भी नहीं। जहाँ भी देखिए वहीं संतों भक्तों के दर्शन होते हैं। कहाँ होता है? मुंबई में आपने करी इस्कॉन के बाहर क्या है, सब कर्मी लोग, कचड़ा, सब पापी लोग हैं, उनका दर्शन होता है। यहाँ तो भक्तों का ही दर्शन, और कब नाम राधे राधे सबके मुँह में है। तो यहीं रहिए, जब कराइए, उससे फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा मैं ये नहीं कहता कि बच जाएगा, प्रारब्ध कर्म भगवान किसी का काटने के पक्ष में नहीं है। जब भगवान अपने प्रिय भांजे, भागवत में लिखा है कि अभिमन्यु, सोचिए इतना उनका भांजा सबका प्रिय, भगवान उसका भी नहीं काटे, चाहते तो बचा लेते। ये तो समय कर्म है, आएगा जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे थे प्रभु आप? क्षणार्ध बिल्कुल हर व्यक्ति, देखो संसार में ना तीन चीज बहुत दुर्लभ है। पहली चीज है मनुष्यत्व, मनुष्य का शरीर, फिर दूसरी है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, और तीसरा है महापुरुष का, महापुरुष की प्राप्ति। अभी हमारे किसी पुण्य कर्मों से या सत्संग से जो भी थोड़ा किए होंगे, उसके फलस्वरूप शिल प्रभुपाद की का संग प्राप्त हुआ किसी न किसी माध्यम से। अब वो क्षण भर का मिला है चाहे कितना भी मिले, अब यदि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। तो वो एक क्षण में, भागवत में तो कहा है, अब चेतन चेतन में भी है, लाओ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग यदि एक वचन भी काम कर सकता है, और अनंत जन्म उसे सुनते आए और मानेंगे नहीं, तो कभी कोई वचन काम नहीं करेगा। कितना भी बड़ा महापुरुष हो, हम अपनी ही बुद्धि से काम करते हैं, क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसके पीछे एक विज्ञान ये है कि जिस व्यक्ति का जिस लेवल पर अंतःकरण शुद्ध होता है उसी लेवल पर उस व्यक्ति को उपदेश काम करता है। अभी तुलसीदास को उनकी पत्नी ने कह दिया, जितना तुम मेरे पीछे आ रहे हो इतना राम के पीछे जाते तो तुमको राम मिल जाते, इतनी बात में उनको हो गया ज्ञान, बस इतनी सी पत्नी से। और हमको यदि चार लात भी पड़ जाए तो भी हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, पत्नी बच्चों को घर परिवार को, फिर थोड़ी देर बाद रूठ जाएंगे और फिर वो लोग क्षमा मांगेंगे तो फिर उसी में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा श्री कृष्ण में वो अनुराग उतनी मात्रा का भी पहुंचा नहीं, तो साधन भक्ति करके उतनी मात्रा तक पहुंचाना है। इसलिए जिन जिन में कम समय में दिखाई पड़ता है इसका मतलब वो लोग पहले से करके आए हैं। अब उनको भले क्षण मात्र में किसी साधु ने कह दिया नाम जप लो, सब छोड़ के बैठ गया, तो वो उसका इसका मतलब, देखो भगवान श्री कृष्ण ही को ले लीजिए, अब हमको कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ पूरा पूरा, लेकिन हम लोग फिर भी पूरी पूरी नहीं जाते, कहीं ना कहीं आत्म सुख की इच्छा रहती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी उतना अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कामना वासना स्वसुख की विद्यमान है, तो उसको ही साधन भक्ति के, भक्ति करने के माध्यम से, श्रवण कीर्तन स्मरण से खत्म करेंगे। फिर मान लो अगले जन्म में 99 इसी जन्म में हो गया, अब 1% बचा था, किसी संत के माध्यम से उसके बाके लग गए, पत्नी बच्चे किसी के भी बाके लग सकते हैं, और बस, तो ऐसा लगेगा अरे एक क्षण में हो गया, एक क्षण में नहीं होता है, वो बहुत क्षणों की जरूरत होती है साधन करते करते। जब अंतःकरण अनन्य और निष्काम बनता है तब ऐसा उपदेश भी काम करता है, तो एक क्षण में हो सकता है। चार महीने डॉक्टर ने बताया, कोई भगवान और कोई ऋषि ने नहीं कहा है कि चार महीने जिएगा, वो तो एक क्षण का कोई भरोसा नहीं, वो तो परीक्षित महाराज को एक ऋषि वाक्य था, वो सत्य ही होगा, यहाँ डॉक्टर तो सर्वज्ञ नहीं है तो वो कैसे हो सकता है, समझे? होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, क्योंकि कभी संग यदि नहीं किया, देखो जिसने भक्ति इस जन्म में या पूर्व जन्म में कभी भी किया है उस व्यक्ति का ही वो उदित होता है भक्तों के संग से भक्ति, अन्यथा वो प्रारंभ से रहेगी, चाहे वो 7 हमको भी तो पता है हर क्षण अभी कभी भी चले जाएंगे, हम ही लोग सावधान नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर उतनी तीव्रता नहीं है। चाहे वो बीमार भले मालूम है, डॉक्टर कहते आज अंतिम सांस है इसकी 1-2 बाद, तब पर भी हम शरणागत नहीं हो पाएंगे उतनी मात्रा में, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी कामना कहीं ना कहीं जीने की उसकी है, वासना भोगने की है, कि ठीक पर हो जाए तो फिर देखो उसको फिर भूल जाएगा भगवान, अभी कैंसर ठीक हो जाए और ज्ञान नहीं हुआ और कैंसर ठीक हो जाए फिर वापस भोगों में लिप्त, और यदि ज्ञान होगा तो चाहे कैंसर हो चाहे कुछ भी हो कि भगवान श्री कृष्ण को ही चाहिए इसलिए मैं उनका ही करूँगा, चाहे मर जाऊँ भले कुछ भी हो जाए, तो ये निश्चय होने की बात है ना? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।